ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृता आत्सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरम् मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णा आभ्याम् भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम् मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहम् वृक्षस्यरेरिव कीर्तिः पृष्टम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगुम् सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्म उपनिषदम् माहम् ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरते यवुपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतम् मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अभिवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रम् कर्णे विश्रुणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यो ब्रह्माणम् विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् हवेदमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुक्षुर्वै शरणमहम् प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अभी आगे आ जाइए तो आगे बैठिए परम पूज्य स्वामी प्रतीकबोधन सरस्वती ने ईशावास्य उपनिषद का शांति मंत्र पूर्णमद पूर्णमिदम का अर्थ हमको बताया और उसके बाद भाष्यकार शंकराचार्य आप भी ऊपर बैठ सकते हैं थोड़ा नेक पेन हो सकता है ऐसा नीचे बैठ भाष्यकार माने शंकराचार्य ने एक संगति भाष्य लिखा है संबंध भाष्य भी कहते हैं उसको ये संगति भाष्य संबंध भाष्य इस उपनिषद का प्रयोजन और उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय इसका टॉपिक इसका तात्पर्य क्या है इसका विषय क्या है और अधिकारी कौन बन सकता है इस उपनिषद के लिए और फल क्या है, और इन तीनों को बीच में जो संबंध है उसको भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने बताया, उसको पहले हम देखेंगे, उसके बाद मंत्र प्रारंभ होगा। ईसावासी का मंत्र है। जैसा स्वामी जी ने बताया, ये इस उपनिषद का एक विशेष एक चीज है, ये मंत्र भाग में है। प्राय उपनिषद आरण्य भाग में होगा, ब्राह्मण भाग में होगा वेद का, ये मंत्र भाग में है। तो मंत्र भाग में होने का विशेष यह है, दो तीन विशेष है उसका। पहला विशेष यह है कि मंत्र भाग में होने से आर्य समाज लोग, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, उन लोगों ने मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं, क्योंकि मंत्र भाग में जो भी दिया है वो कर्तव्य है, वो करना लायक है, करना योग्य है, उसको उसके साथ क्रिया जुड़ा हुआ है, इसीलिए मंत्र भाग कोई दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज शाखा ने वेद मानते हैं। ब्राह्मण भाग और आरण्य भाग को जैसा वो भी वेदांत है, वो भी वेद है, फिर भी उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसी वजह से वो बहुत बहुत स्ट्रांग पार्ट ऑफ द वेदा कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द वेदा। मगर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये मंत्र भाग में है फिर भी इसमें जो भी मंत्र है वो सब अपना स्वरूप का बारे में आत्मा के बारे में, और मोक्ष तो लब्ध वस्तु है, सभी मुक्त पुरुष है। अगर मुक्त ऐसा एक चीज है तो हम आएंगे रोज, बैठेंगे क्लास में, करेंगे सब, उसके बाद इतना दिन के बाद वो होने वाला है, उतना दिन के बाद अगर होने वाला है तो वो मुक्त आत्मा को नित्य नहीं कह सकते आप। एक चीज नित्य भी कहना है, और इट ओवर टाइम, इस टाइम से शुरू होगा करके भी कह नहीं सकते, ये विरोध है। सो इसमें जो जितना भी मंत्र है ईसावासी में वो सब अपना स्वरूप का दिखलाना वाली है, तो इसके लिए कुछ क्रिया करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्रिया का मंत्र भाग में है उसका मतलब है इसका साथ क्रिया होना चाहिए करके, और दूसरा एक है ये पूरा आपका स्वरूप है, स्वरूप तो नित्य बुद्ध शुद्ध स्वरूप है, तो इसके लिए कुछ क्रिया करने का आवश्यकता नहीं है। और ये कर्मकांडी जो अभी तो बहुत कम हो गया, आजकल तो अग्निहोत्र कर्म, संविदा दान कर्म, संध्यावंदन कर्म करने का लोग भी बहुत कम हो गया आजकल, मगर आदिशंकराचार्य भगवतपाद उनका टाइम में कर्मकांडिन बहुत एक स्ट्रांग ग्रुप है, मतलब उन्होंने मेजॉरिटी था, कर्मकांडिन मेजॉरिटी था। तो इसीलिए जब भी कुछ भी उपनिषद शुरू करने के पहले भगवान शंकराचार्य ने उनका दृष्टि से, कर्मकांडिन का दृष्टि से जो भी अपोजिशन हो सकता है, जो भी आक्षेपण हो सकता है, उसको लेकर हमको तो उसको एड्रेस करेंगे, पहले उसका समझाएंगे, पूर्व पक्षी को समझाएंगे, इसमें ये भाग है ये आत्मा के बारे में, इसीलिए इसका क्रिया का कोई आवश्यकता नहीं करके कुछ समझाएंगे, वो सब देखेंगे हम पहले, वो देखने के बाद हम मंत्र भाग को जाएंगे। यहां तो भाष्य है और भाष्य के साथ हिंदी का अनुवाद भी है इस गोरखपुर का पुस्तक में, तो मैं मंत्र भाष्य को पढ़ेंगे और भाष्य के साथ जो भी हिंदी है वो पढ़ेंगे, और बीच बीच में जितना भी मेरा इनपुट्स होता है उसमें वो कहेंगे मैं रोक के, तो इससे थोड़ा फ्लो अच्छा रहता है। हरि ओम। तो ईशादि मंत्राणाम विनियोग है, उसका विनियोग कैसा है करके, थोड़ा माइक मुझे बुक दिखा नहीं दे रहा था, अच्छा ठीक है, ऐसा हो जाता। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। भगवान शंकराचार्य के पहला स्टेटमेंट है वो कर्म में अविनियुक्ता, मतलब वो कर्म में विनियोग होने वाला नहीं है करके। तो ईशावास्यम आदि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है। क्यों? तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनः यातात्म्य प्रकाशकत्वात्, क्योंकि वे आत्म के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। आत्मा की यातात्म्य स्वरूप क्या है बतलाएंगे। ये आत्मा कोई दूसरा चीज नहीं है, हमारा स्वरूप है। तो इसलिए बहुत जरूरी चीज है हम इसको समझाना तो और समझना। तो ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या है? यातात्म्यम च आत्मनः शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्व आदि वक्ष्यमाणम। तो क्या है आत्मा का यातार्थ स्वरूप? शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व और सर्वगतत्व आदि है। ठीक है, जो आत्मा को जो शरीर नहीं है तो वो कुछ कर्म कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता है। तो अगेन ये जो हमको ऐसा लग रहा है कि क्या है इसमें, क्या है कर्म? तो ये मंत्र लेके कर्म भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मगर अगर कर्म के लिए ये मंत्र कर्म के साथ ये मंत्र करना, ये मंत्र समझने के बाद कर्म कुछ करना ऐसा होगी वैसा बन गया तो आपका स्वरूप जानने के लिए आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। और कर्म में जितना भी सामग्री है, कर्ता करण जितना भी सामग्री है वो सब अनित्य है। अनित्य सामग्री से जो भी मिलेगा वो भी अनित्य होगा। अनित्य सामग्री से जो भी मिलेगा वो भी अनित्य होगा। तब ऐसा एक तात्पर्य हो जाएगी कि अनित्य कर्म से नित्य मोक्ष को प्राप्त होगा, अनित्य कर्म से नित्य आत्मा को प्राप्त होगा, यथा विरुद्ध हो जाएगी। तो ऐसा विरुद्ध नहीं होने का। तो इसीलिए शंकराचार्य ने ये संगति भाष्य में यह सब दिखाया हमको। ओके, नेक्स्ट। तच्च कर्मणा विरुद्येत इति युक्त एवैषाम कर्मसु अविनियोग। इसीलिए तो आत्मा तो अशरीर है तो कर्म क्या, आत्मा क्या कर्म क्या करेगा? और आत्मा तो नित्य है तो नित्य आत्मा के लिए नित्य कर्म कैसा काम करेगा? तो ऐसे विरुद्ध, इसीलिए ये जो मंत्र भाग पर होने से भी इसके लिए कुछ कर्म करने का आवश्यकता नहीं है करके। तो नहीं एवं लक्षणम आत्मनः यातात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृत्व भोक्तृत्वम वा येन कर्म शेषता स्यात्। आत्मा का ऐसे लक्षणों वाला यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य विकार्य आप्य और संस्कार्य अथवा कर्ता भोक्ता रूप नहीं है। ये जैसा मैं बतलाया उसको थोड़ा विवरण है। कर्म से जो भी हम पाएगा वो उत्पाद्य होगा, उसके बाद उसको विक्रिया होगा तो चेंज होगा। आत्मा तो अविकार्य है तो ये सब विरोध है। सर्वासाम उपनिषदाम आत्म यातात्म्य निरूपणे नैव उपक्षयात। शंकराचार्य यह कह रहा है कि इस उपनिषद में सिर्फ नहीं है, जितना भी उपनिषद है उस सब में संपूर्ण उपनिषदों की परिसमाप्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने में ही होती है। तथा गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। गीता और मोक्ष धर्मों का भी इसी में तात्पर्य है। तो शंकराचार्य कुछ इंग्लिश में कहना है तो ही कीप्स नो स्टोन्स अनटर्न्ड। मतलब अगर एक चांस मिला तो भगवान शंकराचार्य को वो सब बताएंगे कि पूरा उपनिषद पूरा वेद का तात्पर्य मोक्ष ही है। तो इसीलिए वो जो भी कर्म उसमें दिया है वो एक उपाय है, उसके वजह से अंतःकरण शुद्धि मिल सकती है, मगर मोक्ष के लिए वो डायरेक्ट साधन नहीं है। कर्म मोक्ष के लिए डायरेक्ट साधन नहीं है, ये बतलाने के लिए कहा। गीता भी मोक्ष शास्त्र है, सारा उपनिषद भी मोक्ष शास्त्र ही है करके। तस्माद् आत्मनः अनेक अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पापविद्धत्वादि पापविद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धिं कर्माणि भीतानि। अतः आत्मा के सामान्य लोकों की बुद्धि से सिद्ध होने वाले अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा अशुद्धत्व और पापमयत्व को लेकर ही कर्मों का विधान किया गया है। मतलब अज्ञानी के लिए कर्म विधान किया है। मतलब जब मैं शरीर मानता हूं तभी तो मैं ऊपर चढ़ के आ सकता हूं, तब मैं मुझे भूख लगता है मानता हूं तभी तो मैं जाके कुछ खा सकता हूं। तो अज्ञान जो भी जितना भी कर्म कहला गया है वेद में और वेदांत वेद में, वो अज्ञानी के लिए आत्मशुद्धि के लिए, आत्मा के लिए कुछ करने का कुछ नहीं है। तो ये सब उपनिषद बताएंगे कि आत्मा ही सर्व है, सर्व करके है। उसके बाद ऐसा नहीं कहेंगे कि ये आत्मा ये करना है वो करना है कहने के लिए, उपनिषद का तात्पर्य नहीं करके अभी तक बताया। यो ही कर्म फलेनाति दृष्टेन, वही बता रहा, दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिरहम न काणकुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानां मन्यते सह अधिक्रियते कर्मसु इति इति ही अधिकारविदो वदन्ति। कर्माधिकार के ज्ञाताओं का भी यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्म तेजस आदि दृष्ट और स्वर्ग आदि अदृष्ट कर्म फलों का इच्छुक है और मैं द्विजादि हूं, मैं ब्राह्मण हूं ऐसा, तथा कर्म के अनधिकार सूचक कानेपन कुब्डेपन आदि धर्मों से युक्त नहीं हूं, मैं मेरा स्वस्थ हूं, मेरा शरीर सब स्वस्थ हो, ऐसा अपने को मानता है वही कर्म का अधिकारी है। मतलब ये सब प्री रिक्वेस्ट्स कहते हैं ना, प्री रिक्वेस्ट्स इंग्लिश में, ये सब प्री रिक्वेस्ट्स फॉर कर्म के लिए, ये सब प्री रिक्वेस्ट्स है, कर्म करने के लिए सब प्री रिक्वेस्ट्स है। तो उसके बाद अनुबंध चतुष्टय, तो अनुबंध चतुष्टय में बताएंगे क्या विषय है, क्या संबंध है करके बताएंगे, देखते हैं। तस्माद् एते मंत्राः आत्मनः यातात्म्य प्रकाशनेन आत्मविषयं स्वाभाविकं अज्ञानं निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विचित्ति साधन आत्मैकत्वादि विज्ञानमुत्पादयन्ति। अतः ये मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश करके आत्म संबंधी स्वाभाविक अज्ञान को निवृत्त करते हुए संसार के शोक मोहादि धर्मों के विच्छेद के साधन स्वरूप आत्मिकत्वादि विज्ञान को ही उत्पन्न करते हैं। तो इति एव मुक्त अधिकार्य 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 अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजन प्रयोजन प्रयोजनान मंत्रान संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। इस प्रकार जिनके मुमुक्षु रूप अधिकारी आत्मैक्य रूप विषय प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप संबंध और अज्ञान निवृत्ति तथा परमानंद प्राप्ति रूप प्रयोजन का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन मंत्रों की अब हम संक्षेप से व्याख्या करेंगे करके भाष्यकार पूरा कर रहा है ये संगति भाष्य को। तो अभी थोड़ा भाष्य तो हो गया और संक्षेप इसीलिए कह रहा है कि ये बहुत छोटा एक उपनिषद है, इसमें 18 मंत्र है, 18 मंत्र है, तो छोटा एक उपनिषद है। तो मंत्र तो हमको एक बार हम पहले फर्स्ट मंत्र को एक बार कहे बोलेंगे, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। आप बोल सकते हैं एक बार थोड़ा, आपको भी थोड़ा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं हिंदी में पहले। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वो सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए करके दिया है ट्रांसलेशन में। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर करके। मीनिंग ऐसा बहुत सिंपल दिख रहा है। पहले हम थोड़ा ये सोचेंगे ईश्वर शब्द उसका अर्थ, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम करके कह रहे हैं ना मंत्र। तो यहां से शुरू करेंगे कि पहले आप सब भक्त लोग हैं, मैं भी तो भक्त हूं, हमको थोड़ा विश्वास है ईश्वर है करके, मगर ऐसा विश्वास हो सकता है कि ईश्वर भी एक व्यक्ति है, वो सर्वव्यापी करके हम सुनते हैं पढ़ते हैं, मगर मन में हमेशा ईश्वर एक व्यक्ति जैसा ही वृत्ति परिणाम होती है हमेशा हम सबको। तो ईश्वर क्या एक व्यक्ति हो सकता है करके, ईश्वर पहले ये देखेंगे कि ईश्वर और एक स्टेप पीछे जाके हम ईश्वर को समझने में कोशिश में है, और एक स्टेप पीछे जाके हम देखेंगे ये सब जगत है, तो इसका ये सब सृष्टि है, ये ईश्वर इस सृष्टि का पीछे सृष्टिकर्ता है कि नहीं करके आप बताइए, सृष्टिकर्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोग ये कोई एक थियरी है तो ये सृष्टि क्यों अपने आप आ नहीं सकते हैं, अपने आप तो सृष्टि हो नहीं सकती, क्यों हो नहीं सकते? जैसा मिट्टी में आप देखा तो मिट्टी को निकला तो स्वर्ण का ओर भी निकल जाती है, और जो जितना कुछ चीज अपने आप निकल जाती है, वैसा सृष्टि भी कहीं से कहीं ऐसा आ गया करके ऐसा बोल सकते कि ऐसा एक अगर पूर्व पक्ष किया तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जितना भी चीज सृष्टि में हम देख रहे हैं, जितना भी चीज हम देख रहे हैं उसका पीछे एक, अगर मैं ये कहता हूं ये सेलफोन है, ये तो अब ये सेलफोन दिखा के आपको कह रहा हूं, आपने अगर मुझे पूछा तो ये सेलफोन कहां से लिया करके, मैंने अगर आपको कहा ये सेलफोन तो मैं कहीं से खरीदा नहीं है, तो ऐसा ही मुझे मतलब जब एक कुएं के पास मतलब रोड में जब मैं मतलब डिगिंग के लिए क्या कहेंगे हिंदी में, हाँ सभी तब जो सेलफोन निकला, और ऐसा बहुत कुछ सेलफोन वहां से निकलता है, जैसा स्विट्जरलैंड में वॉच बनता ना, स्विट्जरलैंड में जो वो माउंटेन से ऐसा ही आ जाता है करके कहने से आप तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेलफोन है इसके पीछे एक डिजाइन है, ऐसा लग रहा है कोई पर्पज भी है, मतलब कोई कारण है, तो पर्पज है और डिजाइन भी है, उसका पीछे कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए करके हम तो ऐसा नहीं हो सकता है। वैसा पूरा जगत पूरा दुनिया के पीछे देखे तो जैसा भूमि मंडल है और सूर्य मंडल है, भूमि तो इतना 365 डेज में पूरा सूर्य को घुमा के आती है पृथ्वी, तो जो भी आप दुनिया में जितना भी चीज है वो सबका पीछे बहुत अच्छा डिजाइन है, डिजाइन के वजह से ही हम बॉम्बे में अभी मानसून होने वाला है अभी नहीं होने वाला है करके सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, एक हफ्ता एक महीना आगे पीछे हो सकता है, मगर उसका पीछे भी डिजाइन है, जैसा हवा आ रहा है वहां से वेस्ट कोस्ट से, उसका उसका वातावरण का भी डिजाइन है, जो जो माँ माँ का जो बच्चा होती है वो नाइन मंथ्स नाइन डेज और नाइन आवर्स इसमें प्राय होती है करके कह रहा है, तो उस सबका पीछे बहुत कुछ डिजाइन है, तो जितना भी देखेंगे आप उस सबका पीछे डिजाइन है, तो उसका पर्पस भी है हमको मालूम है। अगर पृथ्वी थोड़ा इस तरफ उल्टी पुल्टी हो गया तो वो मतलब यहां प्राणी का रहने का मुश्किल हो जाएगी, मतलब प्राणी नहीं रह सकते ऐसा, तो पर्पस भी है प्राणियों के लिए, पृथ्वी इतना डिस्टेंस में है इतना स्पीड में चलती है सब है, तो जितना भी आप देखिए, मैं ज्यादा एग्जाम्पल तो अभी नहीं दे रहा हूं, मगर जितना भी देखिए सृष्टि में उसका पीछे डिजाइन है और पर्पस है, इसके लिए सृष्टिकर्ता होना चाहिए करके हम ये युक्ति बता सकते हैं, तो ईश्वर जरूर होगा, जरूर होना चाहिए ईश्वर इसका पीछे। और हमारा तार्किक मत वाले भी ये कहेंगे कि कर्म फल, हम सब हिंदू है, हिंदू का तो वेद में और स्वर्ग में और स्वर्ग का बाद वापस आने में भी विश्वास होना चाहिए, तो कर्म मतलब ये जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म ये सब है ना, उसमें भी उसमें उसको आप कनेक्शन देखा जाए तो भी नेक्स्ट जन्म में ये जो जितना भी मैं कर्म अभी किया हूं उसका हिसाब से उसका रीति से हमको नेक्स्ट जन्म का प्रारब्ध कर्म मिलेगा और संचित कर्म इतना है इसमें से प्रारब्ध कर्म इतना मिलेगा करके कैसा कौन निर्णय करता है। अगर ऑफिस में आप जो जितना भी काम अच्छा करेंगे अगर एक बॉस नहीं हुआ तो आपको प्रमोशन नहीं मिल सकती है। बॉस होना चाहिए और एवेल्यूएशन होना चाहिए, उसके बाद तो बॉस कहेंगे अच्छा ये इतना अच्छा कर्म किया है उसको थोड़ा अच्छा मैनेजर पोस्ट दे दो ये दो करके। तो जितना भी कर्म का संगति हो रहा है आगे पुनर्जन्म और रिस जन्म और उसके बाद जो जन्म है वो संगति करने वाला कुछ कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए, तो वो कॉन्शियस बीइंग को ईश्वर कह सकते हैं आप। तो ये तो हमारा तार्किक मत का आर्ग्यूमेंट है। तार्किक मत वाला ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर है, वेद में ईश्वर का शब्द है इसलिए ईश्वर है करके नहीं मानते हैं, उनको सब लॉजिक चाहिए। तो तार्किक मत वालों भी मानते हैं ईश्वर है, और वैसा जैसा हम कहा डिजाइन और पर्पस, जो भी क्रिएशन है उसका पीछे डिजाइन और पर्पस है, इसीलिए एक डिजाइनर होना चाहिए, एक कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए, उसको हम ईश्वर। तो जैसा भी आप देखा जाए ईश्वर तो जरूर है, वेद कह रहा है ईश्वर है, युक्तिपूर्वक भी ईश्वर है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम यह है इस ईश्वर को कैसा समझने में, हम सृष्टि का हिसाब से ही चलते हैं, सृष्टि में जितना भी है ईश्वर कैसा एक कारण हो सकता है, ईश्वर हम कुलाल है, देखिए कुलाल है वो घट बनाता है, तो जब घट बनाता है उसको घट बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मिट्टी चाहिए और मिट्टी चाहिए वो सब चाहिए, तो वो सब होने से भी घट अपने आप नहीं बनता है, कुलाल का आवश्यकता भी है, और कुलाल भी ऐसा एक कुलाल होना चाहिए उनको वो उसका वो कुलाल घट बनने का पढ़ाई पूरा हो चुकी हो ऐसा एक कुलाल चाहिए ना, तो उनका ज्ञान चाहिए, कुलाल का घट बनने का ज्ञान भी चाहिए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं जो भी सृष्टि है वो सृष्टि बनाने के लिए उपादान कारण मिट्टी जैसा उपादान कारण होना चाहिए और निमित्त कारण भी होना चाहिए, निमित्त को हम ज्ञान इंटेलिजेंस कह सकते हैं और उपादान को हम मटेरियल कह सकते हैं, मटेरियल चाहिए और मेकर भी चाहिए, अगर इंग्लिश में बोले मटेरियल चाहिए मेकर भी चाहिए और मेकर को ज्ञान भी चाहिए वो होना चाहिए। तो इस सृष्टि को सृष्टिकर्ता ईश्वर कैसा ऐसा कुलाल जैसा एक कारण अगर बना तो ईश्वर का यह सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर अगर हुआ तो मतलब ईश्वर का ज्ञान है सृष्टि ऐसा होना चाहिए करके ज्ञान है करके हम ले लिया तो उपादान कारण क्या हो सकता है, एक संशय है। उपादान कारण अगर क्रिश्चियन रिलीजन में अगर गया तो उन्होंने कहेंगे गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फ्रॉम नथिंग, शून्य से दुनिया को बनाया करके वो कहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, ये विरुद्ध है, युक्तिपूर्वक नहीं है। शून्य से शून्य ही आता है, शून्य से कुछ नया कुछ नहीं आ सकता। तो उपादान कारण होना चाहिए, मैटर हैज टू बी देयर टू बिकम इनटू, टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू और गेट मैनिफेस्टेड इनटू सम अदर थिंग। तो उपादान कारण होना ही चाहिए। अगर उपादान कारण है मगर उपादान कारण ईश्वर से अलग करके आप बोला तो वो उसमें भी प्रॉब्लम है। ईश्वर के अलग उपादान कारण अगर हुआ तो उसका प्रॉब्लम यह हो सकता है, वो उस उपादान का वो उपादान उपादान को कौन बनाया, और वो उपादान जहां है उस आकाश को कौन बनाया, तो ऐसा प्रश्न पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो उसको बनाने वाला भी होना चाहिए, उसका उपादान कारण भी होना चाहिए, ऐसा चलते रहेगा, मतलब इसका एंड कंक्लूजन नहीं होगा। तो इसीलिए उपादान कारण, हमारा हिंदू मत में उपादान कारण भी ईश्वरी है, ईश्वर निमित्त कारण भी है, ईश्वर उपादान कारण भी है। ये बहुत बढ़िया एक बात है। इसी वजह से हम हिंदुओं को और सबको देवता मानता है। हिंदू को ऐसा लोग पूछते हैं ना, आप हमको तो एक भगवान है, उनका नाम ये है वो है करके, आपका ऐसा एक भगवान है करके हिंदू लोगों को पूछते हैं लोग। उसका आंसर है हमको सिर्फ एक भगवान नहीं है, हमको सभी भगवान है। वी डोंट हैव वन गॉड, वी हैव ओनली गॉड, यही आंसर है। तो क्यों ओनली गॉड, क्यों ओनली गॉड? इसीलिए ईश्वर निमित्त और उपादान कारण दोनों बन गए। बाकी मत में ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं मगर उपादान कारण नहीं मानते हैं। वो मत वाले बोलेंगे ईश्वर स्वर्ग में बैठ के वहां से सृष्टि पैदा किया, स्वर्ग में बैठ के सृष्टि पैदा किया तो स्वर्ग को कौन बनाया करके एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर स्वर्ग को कौन बनाया, स्वर्ग बनाने के समय ईश्वर कहां था और उस जगह को कौन बनाया, ऐसा प्रश्न का उत्तर नहीं है उनके पास। तो हमारा हिंदू मत में उसका उत्तर भी है, और ऐसा एक हिंदू लोग इतना भक्त है उनको सब ईश्वर हो गया। तो सब ईश्वर होने की वजह से उनका ईश्वर उनका अलग कभी भी नहीं है। ये बहुत बढ़िया एक चीज है। मेरा जितना भाई बहन है, तीन भाई है मुझे, और तीन भाई को दो बच्चे हैं, और बचपन में मतलब अभी भी बहुत छोटा है, जब भी घर मेरा मतलब मेरा माँ बाप के घर आते हैं वो पूजा रूम ढूंढते हैं, सीधा पूजा रूम चला जाते हैं और वहां कुछ नहीं करते, ऐसा देखते रहते हैं और थोड़ा घंटी लेके उसको उसके साथ खेलते हैं। हमारा सब बहुत हिंदू सब हिंदुओं के लोग घर में पूजा रूम तो होगा, अगर पूजा रूम नहीं होगा तो भी एक क्लासेट एक कबोर्ड में पूजा होगा, और बच्चा लोगों को इतना अट्रैक्शन है वो जगह। उसका मतलब यह है अनायास बिना प्रयास से बचपन से हमारा हिंदू का बच्चा भगवान का नाम लेना है, भगवान का देखना है, भगवान का अनुभव भाव बन जाते, इतना आसान से बन जाते, इतना आसान से बाकी मत वाले लोगों बच्चों के मन में भगवान का स्फुरण नहीं होती है ऐसा इतना ईजी से। तो बहुत बढ़िया है हमारा मत ऐसा देखा जाए तो निमित्त और उपादान कारण बन गया ईश्वर। तो ईश्वर बिना और कोई नहीं है। तो अगर देखिए अभी इस मंत्र में ईशावास्यम इदम सर्वम करके दिया है, ईशावास्यम वास्यम मतलब आच्छादनीयम करके दिया है। आच्छादनीयम का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कवरिंग एनक्लोजिंग। ऐसा मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आसान चीज है क्या ईश्वर ईशावास्य सब ईश्वर से आच्छादनीय है करके ऐसा देखने आसान जी से क्या आपको ऐसा दिखता है? नहीं दिखता। अभी तो मैं कहा ईश्वर निमित्त और उपादान कारण दोनों भी कह दिया मैंने। तो जब ईश्वर निमित्त और उपादान कारण हो गया तो ईश्वर के बिना और कुछ नहीं है, रह नहीं सकता है। तो तब तो आप तो ईश्वर का अनुभव तो सभी हमेशा के लिए हो रहा है, सब जो जिसको भी देखिए जिसको भी किए जो ईश्वर का अनुभव ही हो रहा है, मगर फिर भी ऐसा दिया है इस उपनिषद में आच्छादनीय है, आच्छादन करना चाहिए करके दिया है। मतलब इसका मतलब थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उपनिषद भी कह रहा है मुश्किल करके, इसीलिए उपनिषद भी कह रहा है अब तो आच्छादनीय है, आच्छादनीय करना चाहिए करके, करना पड़ेगा करके ऐसा कह रहा है। तो ऐसा ऐसे इट इज अ रूल ऐसा करके दे रहा है, रूल नहीं है, हम देखते हैं। तो ईशावास्यम, हम एक बात पूछते हैं आपसे, ये तो वेदांत का एग्जाम्पल है, हमेशा ये एग्जाम्पल बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप रस्सी में रज्जू में सांप अगर देखा तो हम आप वो रस्सी का सांप आच्छादनीय किया कि नहीं? रस्सी इज एनक्लोज, रस्सी का आप पूरा आच्छादन कर दिया सांप से, देखिए आपका वो आच्छादन करने का पावर है आपके पास है ना, इसलिए आप आच्छादन कर दिया रस्सी का सांप के, देखिए रस्सी वहां सांप नहीं, जो नहीं है उसको आप आच्छादन इतना आसान से कर लिया है ना, तो वो शक्ति तो आपके पास है, आच्छादन करने का शक्ति तो आपके पास है। तो मगर अब दूसरा प्रश्न ये होगा, आप असल में तो रस्सी ही है, सांप नहीं है वहां, तो आप आच्छादन सांप से आच्छादन कर दिया उसको, सांप कहां है? सांप सीधा कहना चाहिए तो आपका बुद्धि में है, अज्ञान तो बुद्धि में है, तो आपको बुद्धि में है करके कहना है। सांप आपका बुद्धि में है, सांप का सामग्री सब आपका बुद्धि में है, सांप का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों आप बन गई है ना, तो दोनों आप बन गई, सांप का निमित्त कारण बने के उपादान कारण बन के आपका बुद्धि निमित्त कारण भी बना, और अज्ञान बुद्धि में जो अज्ञान है वो उपादान कारण बन के तो आपका सांप दिखाया। तो प्रॉब्लम जहां है सॉल्यूशन वहां वहीं अप्लाई करना है ना। देखिए अगर मेरे को चोट यहां लगे तो जो भी ऑइंटमेंट लगाना है यहीं पे लगाना है। तो अगर प्रॉब्लम बुद्धि में है तो कहां प्रॉब्लम को जो भी सॉल्यूशन है वो बुद्धि में ही अप्लाई करना चाहिए हमको। तो अज्ञान बुद्धि में है तो बुद्धि को ही हम डील करना चाहिए। तो उसका मतलब यह है जो आच्छादनीय बुद्धि जैसा आच्छादन किया है, बुद्धि जैसा आच्छादन किया है, उस बुद्धि का वो आच्छादन करने का शक्ति है। अगर उस बुद्धि को ठीक वो एरर जो एरर है वो सब निकल गया तो आप उसी सांप में रस्सी का आच्छादन करेंगे। आप रस्सी तो असल में है, वो बहुत अनायास है ना आच्छादन करेंगे आप है ना। तो बुद्धि का ज्ञान हो गया तो वहां रस्सी बन गया, वो रस्सी तो है, रस्सी आपको दिखेगा। तो इसी तरीका से अगर आपको बुद्धि में ना ज्ञान ठीक हो गया तो ईशावास्यम अनायास है ना हो जाएगा ज्ञान हो गया तो ईश्वर से आच्छादनीय अनायास है ना हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रयत्न का भी जरूरी नहीं है, तो जस्ट बैठ के सुनना है। कल भी स्वामी जी बताएंगे, और बढ़िया बताएंगे स्वामी जी। तो ऐसा वेदांत सुनने से ही हो जाएगा। तो देखिए वेदांत सुनने से, इसीलिए शंकराचार्य ने वो पहले जो भाषण दिया है उसमें बार बार ये कह रहा है हमारा स्वरूप जानने के लिए ज्ञान बिना और कोई उपाय नहीं है करके, उसके बाद कुछ करने का नहीं है। अगर करने का हो ऐसा करके आप यहां बैठा है तो आपको ऐसा एक वृत्ति बन जाएगा मन में, अगर ये तो ब्रह्मचारी कुछ बोल रहे हैं, ये अच्छा थियरी है, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करना है, ऐसा इस वृत्ति से आप गए तो पूरा लाभ उठ नहीं सकते, पूरा फायदा आप ले नहीं सकते आप। तो अगर केमिस्ट्री में लैब में कुछ चीज, अगर न्यूयॉर्क का बात अगर मैं कहा तो न्यूयॉर्क एक जगह है, उसके लिए ज्ञान चाहिए पहले, कैसा जाना है, वो कौन सा फ्लाइट पकड़ना है, सब ज्ञान चाहिए, उसके बाद अनुभव भी बाद में होगा न्यूयॉर्क का। आत्मा और आपका ज्ञान के लिए, आपका अनुभव के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्ञान एक ही काम करेगा, क्योंकि आप तो हमेशा आपके पास है, कहीं जाने का इन टाइम जाने का नहीं है, इन स्पेस जाने का नहीं है। तो इसीलिए कह रहे टेक्निकली देखा जाए तो भी आत्म ज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान एक ही उपाय है और किसी का उपाय जरूर नहीं है। एक बार एक महात्मा ने, हमारा गुरुजी ने एक एग्जाम्पल भी दिया। वो फ्लाइट में जा रहा था ऋषिकेश तक, मतलब देहरादून तक जा रहा था। उनका पास में और कोई बैठ रहा था। हमारा गुरुजी को देख के वो कहा, आप तो साधु जैसा लग रहे हैं। मैं वहां जाके, स्वामी दयानंद सरस्वती का बात कर रहा हूं मैं, अभी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती उनका बात, उनसे पूछा, मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलना है करके। जो सामने बैठा है फ्लाइट में, हमारा दयानंद सरस्वती स्वामी से ही पूछा, मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलना है, आपको मालूम है क्या करते हैं तो उनका आश्रम जाने का मरसमण में। देखिए, वो जैसा पूछा, उनको क्या आवश्यकता है वहां, सिर्फ ज्ञान आवश्यकता है, मैं ही स्वामी दयानंद सरस्वती करके। उसके बाद वो प्रयत्न कुछ करने का आवश्यकता है क्या? नहीं, ऐसा ही आत्मा का बारी, आत्मा के बारे में बस ज्ञान आपको ठीक ठाक पक्का हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसीलिए वेदांत ऐसा शांकर भाष्य सहित पढ़ना है, मतलब जो शांकर भाष्य पढ़ा है उनसे सुनना है वेदांत। स्वामी प्रतिभुवन स्वामी जी 40 साल 30 साल इसी में है। मैं सिर्फ 3 साल पढ़ा हूं, वेदांत सिर्फ 3 साल ही पढ़ा हूं मैं। तो आप ये कल और परसों उन्होंने क्लास लेंगे, आप रोज आइए, आके उसका लाभ उठाइए आप। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजीता मां कृत कस्य शुद्धनम। स्वामी जी से मैंने पूछा, स्वामी जी मैं कितना तक लूं करके। स्वामी जी ने कहा, तुम मंत्र शुरू कर दो और जितना तक जाएगा जाएगा। मुझे मतलब उसमें उतना कंफर्टेबल फील नहीं किया, इसीलिए कि ये सब बहुत मतलब फर्स्ट लाइन में ही इतना मीनिंग है। मैंने जितना कहा और आपको इतना मतलब मिल सकती है, तो अगर मैं शुरू किया तो स्वामी जी आके तो वो अच्छा नहीं रहेगा करके कहा। मगर फिर भी मैं जितना भी कहा वो मेरा अनुभव है, मतलब वो मेरा गुरु जी से सुनकर मुझे जो आकार हुआ वो आपको शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और आप वेदांत पढ़ने में मन लगे। थोड़ा बहुत भाष्यम भी देखते हैं यहां, और क्या 15 मिनट है, थोड़ा भाष्यम भी देखते हैं। तो ईश्वर शब्द का आजा हाँ 10 मिनट बाकी, ठीक है। तो ईश्वर का तो हम अभिन्न निमित्त उपादान कारण मान लिया, हाँ अभिन्न निमित्त उपादान कारण मान लिया ईश्वर को। तो ईश्वर बिना और कुछ नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। तो और कुछ उपाय नहीं है, और कुछ रास्ता नहीं है, ईश्वर ही सभी होना चाहिए। तो ऐसा हो गया, तो ईश्वर से आच्छादनीय होना, तो ईश्वर से आच्छादनीय मतलब सभी ईश्वरी है, ऐसा हम ले सकते हैं। यत्किंच जगत्याम जगत, हमको हमेशा जगत शब्द का, जब ईश्वर सभी जगत करके हम जब सुनते हैं, हमको लगता है हाँ ईश्वर तो सारा जगत है हमको छोड़ के ऐसा लगता है ना, लगता है ना, हमको छोड़ के भी नहीं कहते हैं, मगर हमको ऐसा लगता है हाँ ईश्वर तो सब है। अरे ईश्वर तो सब जब बोलेंगे आप, ईश्वर आपका शरीर भी है, आपका मन भी है, आपका बुद्धि जो सोच रहे है वो भी है, सभी है। तो ईश्वर छोड़कर और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है। तो आपको अभी, आप कौन है अभी प्रश्न उठना चाहिए, अनायास है ना अभी उठेगा प्रश्न। ईश्वर छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है। यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत एक पद है, यत्किंच विदाउट लिविंग एनीथिंग, कोई भी छोड़ा नहीं है, सब मिलके पूरा जगत ईश्वर ऐसा बन गया। तो आपका शरीर भी ईश्वर बन जाएगा, मन भी ईश्वर बन जाएगा। तो इसमें मैं कौन हूं, ये ठीक प्रश्न है, मैं कौन हूं करके अभी आप पूछ सकते हैं। इतना तो ज्ञान होने के बाद अब मैं कौन हूं पूछने का। कोई कोई मत में कहते हैं, ध्यान जो जिनके ध्यान का प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, वो बोलते हैं आप चुपचाप, कुछ सुनने का जरूरी नहीं है, बहुत सुन लिया आपने, बहुत थियरी हो गया, आप चुपचाप बैठ के ध्यान करो। क्या ध्यान करो? मैं कौन हूं ऐसा ध्यान करो करके। अगर मैं कौन हूं और ध्यान कहां होगा? आपका बुद्धि में ही होगा। आपका बुद्धि में जो प्रश्न हो रहा है उसके जवाब तो बुद्धि ही देंगे। बुद्धि में अगर ज्ञान शास्त्र अनुसार विचार ज्ञान नहीं हुआ तो उस बुद्धि से क्या जवाब आएगी? मैं कौन हूं पता नहीं, मैं कौन हूं पता नहीं, ऐसा ही जवाब आएंगे। ये जवाब थोड़ा ठीक है, कभी कभी उल्टा पुल्टा जवाब भी आ सकते हैं, मैं वो हूं, मैं हूं, मैं सब हूं, ऐसा करके कुछ अनडाइजेस्टेड शास्त्र के वजह से कुछ बैड उत्तर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए वो मैं कौन हूं प्रश्न आप तब पूछेंगे, जब पूछेंगे तब आपको थोड़ा शास्त्र विचार हो गया, तब उसके बाद मैं कौन हूं करके पूछना चाहिए। और मैं कौन हूं उत्तर भी शास्त्री दे सकते हैं, शास्त्री तो दे सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा ब्रह्म शब्द मैं ब्रह्म हूं मैं आत्मा हूं करके शास्त्री तो कह रहे हैं। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करके एक वर्ड है ना, आपको मालूम है वो क्या, कंप्यूटर साइंस का वर्ड है सॉफ्टवेयर करके। तो सॉफ्टवेयर करके वो जो वर्ड है वो उसके उसका अर्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही ढूंढना है, कंप्यूटर जो जानता है उनके पास ही उनका अर्थ मिलेंगे। जैसा आत्म शब्द ब्रह्म शब्द आत्म जीव 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 ब्रह्म ऐक्य ईश्वर शब्द ये सब शास्त्र ही हमको बता रहा है, तो शास्त्र में ही ढूंढना है, ढूंढने का मैं का अर्थ क्या है, मैं कौन हूं करके ऐसा शुरू करने। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं आप शास्त्र सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहो उसका व्याकरण पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, उसमें व्याकरण भी है पहले शुरू में ही, व्याकरण शंकराचार्य व्याकरण से ही शुरू कर रहा है शास्त्र को तो है, मगर ये इतना ही कह रहा हूं। तो जितना भी आपका विचार है आपका असल स्वरूप बारे में, वो विचार का सामग्री शास्त्र ने ही आपको दिया और उसका उत्तर भी शास्त्र में ही आपको देंगे। तो यत्किंच जगत्याम जगत, एक जगत सर्व जगत पूरा जगत आपको मिलके आपका मिलके सब, तो इसमें मैं कौन हूं करके एक प्रश्न आ सकती है। तो इसका उत्तर है आ रहा है, उसका पहले मैं एक चीज पूछूंगा आपसे। जो भी जगत आपको पहचान हो रहा है आपका आंख के द्वारा कान के द्वारा जितना भी जगत को आपको उपलब्ध हो रहा है वो कहां उपलब्ध हो रहा है, वो कहां प्रकट हो रहा है, आपको बुद्धि में प्रकट हो रहा है ना, बुद्धि में ही प्रकट हो रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर कोई कुछ नहीं है अंदर ही सब, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, अंदर ही ढूंढो अंदर, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, टेक्निकली पूछ रहा हूं जितना भी चीज आपको दिखाई पड़ रहा है वो बुद्धि में तदाकार वृत्ति बनना चाहिए, तभी तो आपको उसका ज्ञान मिलेगा। गट अगर गट लिया तो पॉट का वृत्ति है, अगर मैं ये पॉट जानता हूं करके कैसा समझना पड़ेगा, वो बुद्धि में वृत्ति बनना चाहिए। तो बुद्धि में ही सब वृत्ति बन रहा है, जब बुद्धि में सब वृत्ति बन रहा है तो एक बहुत बढ़िया चीज आप बता के मैं मेरा प्रवचन को पूरा कर दूंगा। तो अभी देखा ईश्वर निमित्त उपादान कारण करके, और हम अभी कहा आपको जो भी कार्य दिख रहा है जितना भी कार्य दिखाई पड़ रहा है आपको वो कार्य सब बुद्धि में उपलब्ध हो रहा करके। तो एक बात बताइए आप, कारण जो है वो कार्य से बिना रह सकता है? बहुत आप थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए जवाब ठीक ठाक अच्छा जवाब दे रहे हैं सर। कारण का बिना नहीं रह सकते, घट मिट्टी का बिना रह सकता है? आप अच्छा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप अगर आप मैं आपको कहा तो एक गट को आप मन में इमेजिन किए करके मतलब कल्पना करके आप क्या कहते हो, वो कल्पना को भी मिट्टी चाहिए आपको, कल्पना मिट्टी चाहिए आपको, ऐसा हो जाती है। तो कारण जहां है कार्य जहां है वहां कारण होना चाहिए, है ना। देखिए कार्य सब आपका बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है, कार्य सब आपका बुद्धि में कार्य जो भी कार्य है आपका बुद्धि में दिखाई पड़ रहा है, तो कारण कहां होना चाहिए? बुद्धि में कारण होना चाहिए, तो कारण भी वहां वही होना चाहिए कार्य भी। तो कारण तो भगवान है, ईश्वर है ना, तो कारण तो ईश्वर है, तो कारण तो ईश्वर है, और ईश्वर कार्य के रूप में आपका बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है, तो बहुत बड़ा चीज है वो। तो ईश्वर का उपलब्ध हमेशा जितना भी कार्य आप देख रहे हैं तो बुद्धि में आपको ईश्वर उपलब्ध हो रहा है। तो हमेशा के लिए आप जितना भी कारण देखो, ये कार्य वो कार्य बक्षित कार्य वो कार्य कार्य देखो उसमें ईश्वर उपलब्ध है, कार्य उपलब्ध हो रहा है, तुरंत उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि कार्य कारण के बिना नहीं रह सकते। तो तुरंत आपको ईश्वर का उपलब्ध इमीडिएटली हो रहा है, तुरंत हो रहा है। तो ईशावास्यम इदम सर्व मतलब ये जो उपलब्ध जो ईश्वर है ना बुद्धि में, तो उसका जिक्र आपको इसको ईशावास्यम कवर करने का आचरण करके कोई जरूरी नहीं है। बुद्धि में तो जब उपलब्ध होगा तब ईश्वर भी होगा, जब है आप ईश्वर से आचार्य हमेशा के लिए है तभी तो उपलब्ध होगा। तो ये तो फैक्ट है, ये प्रैक्टिस करने का चीज नहीं है। ईशावास्यम मिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये कुछ अभ्यास की चीज नहीं है, ये तो फैक्ट है। बुद्धि में सब कार्य उपलब्ध हो रहा है, वो बुद्धि में सब कार्य दिखाई पड़ रहा है। कार्य कहां जहां है वही कारण भी होना चाहिए और कारण ईश्वर है। तो बुद्धि में हमेशा के लिए ईश्वर आपका उपलब्ध हो रहा है, तो इसको ही कहते हैं अंतर्यामी। ये बात तो बहुत पाठ में भी अंतर्यामी करके आता है। अंतर्यामी क्या है? ऐसा जो ईश्वर उपलब्ध हो रहा है हमारा बुद्धि में, जो कारण है जिसका बिना कार्य नहीं रह सकता है, उसको ही अंतर्यामी। तो ये कह के मैं मेरा प्रवचन को अभी समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।